الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی ہم 125 آیتیں پڑھ چکے ہیں آج 126 نمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اس بات کو بھی یاد رکھو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے یہاں جو باشندے ہیں رہنے والے ہیں ان کو ثمرات کی قسم کا رزق عطا فرما, ہر اس شخص کو جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں نے بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اطاعت کے آخری درجے پر کھڑے, وہ باللفظ پیروی کرتے اور اس میں جھجکتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں, ڈاماڈول نہیں ہوتے. تو یہ ان کے ہاں جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. چنانچہ اوپر کہا گیا تھا کہ آپ کو امام بنایا گیا ہے تو آگے سے درخواست کی کہ میری اولاد بھی, تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہوگا. اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ رزق کی دعا کی اور کہا کہ ان کو رزق ملے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس سے اب جو ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو ہے, خدا کے حضور جو بندگی کا ان کا ایک شان ہے, وہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ میں دعا ہر ایک کے لیے مانگوں. ٹھیک ہے, صرف ان کے لیے مانگی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار, کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں صرف ایمان والوں کو رزق دوں گا بلکہ کافروں کو بھی دوں گا, لیکن بس اسی دنیا کے لیے, اس دنیا میں دے دوں گا اور اس کے بعد پھر ایک بڑے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس آیت میں جو چند اہم چیزیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ شہر جو تھا اس میں پہلے سے لوگ رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ صرف اپنے بچوں کو یہاں نہیں چھوڑا. ورنہ کہنا چاہیے تھا میری اولاد کو رزق دے, کہا گیا کہ یہ شہر ہے اس شہر کے باسیوں کو رزق دے. یہ ایک لازمی اشارہ نہیں ہے لیکن بہرحال بات نکلتی ہے. تو ایک تو یہ بات نکلتی ہے, دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو من الثمرات کا ذکر ہے, یہ ثمر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں, یہ قدیم زمانے سے آج تک یہ تجارت وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لوگوں نے اس کا عام طور سے پھل ترجمہ کیا ہے, لفظ کے اعتبار سے وہ بھی ترجمہ بنتا ہے, لیکن اصل میں مقصود یہ تھا کہ تجارت سے جو منافع ہوتا ہے اس کی ان کو رزق عطا فرما. اور خانہ کعبہ کی وجہ سے بھی ایک ثمرات کی نوعیت کا رزق ان کو ملنے والا تھا. تو آپ یہ بھی شامل کر لیں, پھل بھی شامل کر لیں, کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اس کا غالب پہلو یہ ہے کہ وہ تجارت کے ذریعے سے اور خانہ کعبہ کے ذریعے سے جو ثمرات ان کو ملنے ہیں وہ ان کے رزق کا سبب بنے. چنانچہ خانہ کعبہ کے ارد گرد صدیوں سے بازار لگتے تھے, میلے لگتے تھے, اس میں پھر ان کے لیے کمائی کا ذریعہ ہوتا تھا. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو عازمین حج کے جو سارے پیسے ان کو جاتے ہیں تو اس سے اس سرزمین کو ایک رزق ملتا ہے. ٹھیک یہی سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے چلتا آ رہا ہے, یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. ثمرات کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا, ورنہ تجارت بھی بولا جاتا ہے کہ صرف تجارت نہیں ہے بلکہ وہ جو بھی منافع کے ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے وہاں موجود ہیں. دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اوپر جو لا ینال و عہد الظالمین ہے उसके मानी क्या है। कहा गया ना मेरी ज़रूरत में, तो उसके मुकाबले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन लोगों को रिस्क दे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो गोया ज़ालिम आदमी वो है अपने बुनियादी तरीन मानी में कि जो अल्लाह और आखिरत को नहीं मानता। मानने का मतलब मानना है, ना कि सिर्फ ये ख्याल होना कि ऐसा होगा। ईमान के और यकीन के बारे में मैं बात वाज़े कर चुका हूँ दो तीन मकामात पे। यकीन और ईमान दरअसल सोचे समझे बातों को मानने के मानी में होता है, बेख्याली में कोई मान जाने की बात नहीं होती। यकीन भी बेख्याली में मानी हुई बातों को नहीं कहते कि बस यकीन कर लिया मैंने, नहीं, वो नहायत मोहकम बात होती है जिसके मोहकम होने पर मेरा यकीन होता है। ऐसा ही ईमान इस बात का नाम नहीं है कि जी मैंने सुना तो मान लिया, नहीं, ये नहायत सोचा समझा ही बात होती है, बड़ा पक्का फैसला होता है, उसको ईमान कहा जाता है। चुनाँचे हमारे यहाँ मैंने अर्ज़ किया था कि ये जुमला बोला जाता है कि मन काला ला इला इल्ला दाखिल जन्ना, तो ये ईमान लाने के मानी में था, कलमा गो होने के मानी में नहीं था। उधर मुँह से कलमा कहा उधर जन्नत में चले गए, मतलब कि जिसने जो कायल हो गया इस बात का कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, तो यहाँ ये ईमान उसी मानी में कि पूरे पुख्ता इरादे के साथ अल्लाह और आखिरत को मानो। ये जो दो ईमान हैं ये सारे ईमान की जड़ है, सारी नेकियों की जड़ है। इनमें से एक ईमान ख़त्म हो जाए तो दीन बाकी नहीं रहता। अगर अल्लाह ही नहीं है तो हिसाब किताब क्या होना है, बाज़ पुरस क्या होनी है। आज का जदीद इंसान यही कहता है ना कि भाई कायनात बन गई, बनती रहती है, टूटती रहती है, ना कोई खुदा है, ना किसी को जवाबदेही है, ना कोई ज़िंदगी का मकसद। तो अल्लाह ताला के ईमान ख़त्म हो जाए तो तब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आखिरत अल्लाह हो और आखिरत ना हो तब भी नेकी की दीन की कोई ज़रूरत नहीं। नेकी और दीन की ज़रूरत इसलिए है कि आखिरत पर पता नहीं हमारे साथ क्या होना है, उस अंजाम से बचने के लिए। तो ये दो बुनियादी ईमान है, इसी से बाकी ईमान फूटते हैं। अल्लाह के रसूलों को हम इसलिए मानते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो ना मबूस फरमाते, कुरान ने कहा भी है कि इल्ला लियुता बेइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाती है। वो ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नहीं है तो तब भी हम मान रहे हो, नहीं, वो अल्लाह के होने की वजह से मान रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला जब मबूस फरमाते हैं अपने रसूलों को तो उनके हमारा ईमान इस वजह से होता है कि वो खुदा के नुमाइंदे हैं। इसी तरह आप देखिए नेक अमल, फरिश्ते, आखिरत, ये सब कुछ जो है वो इन्हीं दो ईमानों से फूटता है। और जो काफिर हैं वो असल में इन्हीं दो का इनकार करके बनते हैं, लेकिन उस वक्त अल्लाह का इनकार हो जाता है जब हम उसके रसूल का इनकार कर देते हैं। इसको मैं एक मिसाल से समझाया करता हूँ कि मसलन हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब अपना एक नुमाइंदा भेजें और वो कहें कि ये काम उन्होंने मुझे करने को कहा है, हम कहें हम नहीं बात मानते, तो असल में हमने इस नुमाइंदे की बात नहीं मानी, का इनकार नहीं किया, वज़ीर आज़म का इनकार किया कि उसके भेजे हुए आदमी को हम मान ही नहीं रहे। तो रसूल का इनकार दरअसल अल्लाह का इनकार है, तो उसकी अहमियत इस वजह से बहुत बुलंद हो जाती है। तो ये अब ज़ालिम का मतलब क्या होगा कि वो दीन की बुनियादी तरीन हकीकतों का इनकार कर दे और फिर उससे निकलने वाले नतायज का इनकार कर दे। इन दो बुनियादी ईमानात से निकलने वाले नतीजे हैं फरिश्तों को मानना, रसूलों को मानना, किताबों को मानना। तो अगर कोई आदमी इनका भी इनकार करता है तो वो भी दरअसल इन्हीं का इनकार करता है, इन्हीं दो चीज़ों का। तीसरी बात ये समझ आ रही है इस आयत में से कि रिस्क का ताल्लुक नेकी से नहीं है, रिस्क का ताल्लुक नेकी से नहीं है। नेक से नेक आदमी बदहाली में ज़िंदगी, तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार सकता है, और बुरे से बुरा आदमी अय्याशी के साथ फिरौन और कारून की तरह हो सकता है। किसी नेकी का ताल्लुक रिस्क के खुलने से नहीं है, रिस्क के तंग होने से नहीं है। ये हमारे यहाँ बाज़ रवायात जो मशहूर कर दी गई उनकी वजह से मसला पैदा हुआ है। सूरह बनी इसराइल में जाएं जब पहुँचेंगे हम तो मैं वहाँ जाकर वाज़े करूँगा कि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क का कायदा बनाया है उसका कोई ताल्लुक हमारे आमाल से नहीं रखा, और बाज़ का तो ये भी महसूस होता है कि हमारी मेहनत से भी नहीं रखा, वो खुदा की अपनी तकदीर। वो असबाब ज़रूर होते हैं लेकिन वो ज़ाहरी होते हैं। मसलन जो आदमी किसी कानून के घर पैदा हो जाए तो उसने क्या मेहनत की है, वो इतनी बड़ी विरासत का मालिक बन जाता है। ठीक है, तो मेहनत भी शर्त नहीं है, और हाँ असबाब पैदा करना शर्त हो सकती है कि वो असबाब पैदा होने चाहिए। ये ना हो कि हम घर बैठे रहें और ख्याल करें कि रिस्क आ जाएगा, वो मेहनत करनी, इस पहलू से मेहनत करनी लाजम हो जाती है। तो ईमान यानी पूरा कुरान मजीद खाली है कि नमाज पढ़ोगे तो रिस्क खोलूँगा, रोज़ा रखोगे तो तंग दस्ती नहीं होगी, खाली है। इसका कोई ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि जो आदमी साहिब सरबत है वो अल्लाह को पसंदीदा है, बल्कि सूरह काफ वगैरह में और सूरह ज़ुख़रफ़ में ये बात बयान की गई है कि अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे के सारे लोग एक ही रास्ते पर चल पड़ेंगे तो मैं काफिरों की सीढ़ियाँ और छतें सोने और चांदी की बना देता, इतना देता उनको। तो ये ज़ाबता है, इसका मतलब यह है कि एक अमीर आदमी जो है वो हो सकता है कि अल्लाह की निगाह में बुरा हो, काफिर करार देकर मामला साफ कर दिया गया हो। सूरह अहकाफ में इसलिए अल्लाह ताला ने बताया है कि जब क़यामत के दिन ये लोग आएंगे तो मैं कहूँगा मैंने तुम्हें दुनिया ही में तमत्तो करवा दिया था, सारी चीज़ों का तुम्हें नफ़ा पहुँच गया, तुमने खूब लज़त उठाई, अब आ जाओ अपने इंजाम के लिए। तो इसलिए ये ख्याल ना करें कि अल्लाह मुझसे राज़ी है इसलिए रज़्क़ खुला दिया हुआ है, दूसरा इम्कान भी उतना ही है कि अल्लाह शायद नाराज़ हो गया हुआ है। मौलाना इस्लाही कहा करते थे हमारे उस्ताद के, जब लंबी देर तक कोई आजमाइश ना आए तो डर जाना चाहिए कि कहीं अल्लाह ने बुला तो नहीं दिया, ये क्योंकि अल्लाह ने बुला दिया इसलिए वो आसान ही आसान कर रहा है, दुनिया में देने का फैसला कर लिया। तो ये वो चीज़ है जिसको समझना चाहिए। तो इसी तरह के मकामात से ये हिकमतें समझ में आती हैं कि जब मवाजने में दो बातें हो रही होती हैं और एक जलील कदर रसूल का शानदार सवाल था, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक हकीकत वादे कर दी कि नहीं मैं काफरों को भी दूंगा, देता हूँ थोड़े देर के लिए यानी दुनिया के लिए, फिर उनको आग के अजाब की तरफ हांक ले जाता हूँ, खींच ले जाता हूँ। तो ये दुनिया का कानून है, अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, इस तरह से बनाया है। तो वो आदमी जो गरीब है ये ना ख्याल करे कि अल्लाह नाराज़ है, और जो आदमी अमीर हो गया है वो ये ख्याल ना करे कि अल्लाह ताला राज़ी है, दोनों की आजमाइश हो रही है, दोनों के लिए एक मुश्किल और एक आसान इम्तिहान हो सकता है, लेकिन भारत दोनों के लिए इम्तिहान है। फ़क्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बेइज्जती की चीज़ है, और फ़क्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अजमत की चीज़ है, वो भी आजमाइश है। कुरान मजीद ने इसको बयान किया है कि मैं जब अपने बंदे को आजमाता हूँ तो उसका रिस्क तंग कर देता हूँ, और वो कहता है रब्बी अहानन, मेरे रब ने मेरी बड़ी तोहीन कर दी, हालांकि आजमा रहा होते हैं अल्लाह ताला। तो उसको तोहीन नहीं समझना चाहिए, ना वो कोई अजमत की अलामत है। यानी नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौरे अव्वल है नबूवत से पहले, वो एक अमीर कबीर आदमी का है। हज़रत खदीजा को जो हक मेहर दिया है वो आज मैं आप सोच भी नहीं सकते, और फिर हुक्मरानी के तकाज़ों से आपने फ़क्र को इख्तियार किया, तो वो फ़क्र नेकी की वजह से इख्तियार नहीं किया और रियासत की वजह से इख्तियार किया, वगरना आप वहाँ भी अमीर आदमी हैं, कोई मसला नहीं, कोई कमी नहीं किसी पहलू से भी। अलबत्ता आपने असाबे सुफा की जिम्मेदारियों की वजह से, महाजरीन की जिम्मेदारियों की वजह से अपनी ज़िंदगी सादा रखी, और फिर हमारे खुलफाए राशिदीन ने भी रियासत की जिम्मेदारियों के हवाले से यही रवैया इख्तियार किया। लेकिन आम आदमी के लिए फ़क्र कोई इज़्ज़त की चीज़ नहीं है, ना वो ज़िल्लत की चीज़ है, आजमाइश है। ना इख्तियारी तौर पर फ़क्र अपनाना चाहिए, जो कि दीन का मुतालबा नहीं है कि मैं फ़कीरी की ज़िंदगी इख्तियार करूँ। हमने सूफिया के अंदर भी बड़े अमीर लोग देखे हैं और गरीब लोग भी देखे हैं, उलमा के अंदर भी देखे हैं और सहाबा के अंदर भी देखे हैं। तो इसलिए कोई ना कमाने की चीज़ है ना कोई हदफ की चीज़ है, खुदा का फ़ैसला होता है, तो वो देना चाहता है तो दे देता है, नहीं देना चाहता तो वो नहीं देता। अलबत्त हमें अपनी दयानतदारी के साथ कोशिश जारी रखनी चाहिए। دنیا دارال امتحان ہے اور اس کے بعد نتائج کی دنیا ہے. دارال امتحان میں دارالعدل نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. یہاں سوالات ہیں, سوالات کیا ہیں؟ وہ ہماری تقدیر ہے. اچھے برے حالات, پھسلنے کے مواقع, سنبھلنے کے مواقع, یہ سب کے سب امتحانات ہیں. آپ کو بیوی اچھی نہیں ملی, شوہر اچھا نہیں ملا, آپ کو بہن بھائی اچھے نہیں ملے, والدین اچھے نہیں ملے, اچھے مل گئے, یہ سب کچھ امتحان ہے. آپ کو ملازمت نہیں ملی, آپ کا کاروبار نہیں ہوا, مل گیا, کاروبار ہو گیا, جاب ہو گئی, یہ سب امتحانات ہیں. کوئی چیز بھی یہاں کی ایک ایک سانس جو آپ کو یہ نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ امتحان ہے. یہاں جزا نہیں ملتی. یہ وہ غلط فہمی ہے, اس کو زائل ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں ظاہر ہوتی. نہیں, اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے. یہاں سوالات صادر ہوتے ہیں, کوشچن پیپرز میں لکھے ہوئے کوشچن ہیں. یہ میری بہن ہے, بڑی سخت قسم کی ہے, یہ میرے لیے ایک مشکل سوال ہے. یہ میری والدہ ہے, بالکل ہی سادہ لو ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیسے سنبھالیں, یہ بھی امتحان ہے. آج چوری ہو گئی ہے گھر میں, یہ بھی امتحان ہے. آج پیسے آ گئے ہیں گھر میں, یہ بھی امتحان ہے. کوئی چیز امتحان سے باہر نہیں ہے. تو یہاں پر ریوارڈ نہیں ملنا سوائے کافروں کے, جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. صرف کافروں کو ان کی نیکیوں کا ریوارڈ دنیا میں ملنا ہے, کیونکہ کافر بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ماں کو سنبھالا ہوا ہے, کوئی باپ کو, کوئی رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہوں گے, وہ کوئی سماجی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ برے لوگ بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کفر کی وجہ سے ان کے اعمال کی کوئی وقت نہیں رہتی, اس لیے اس کا ریوارڈ تو دنیا میں مل جاتا ہے, لیکن نیکیوں کا ریوارڈ دنیا میں نہیں ملتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. اس کا کوئی جملہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا. صحابہ کے بعض وعدوں سے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم دنیا میں نیکی اختیار کرو گے, رسول کا ساتھ دو گے, تو میں تمہیں خلافت دوں گا. وہ رسالت کے وعدوں کے اندر ایک وعدہ ہے, نہ کہ میرے آپ کے ساتھ. چنانچہ ہم نے پچھلے 300 سال سے خلافت کی بڑی تحریکیں چلائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. آگے بڑھتے ہیں جی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ بات بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ شامل تھے, تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب, آغاز انہوں نے یہاں سے کیا کہ اے ہمارے رب, ہماری دعا کو قبول کیجئے, آپ بلا شبہ سمیع و علیم ہیں. اس آیت میں بھی دو باتیں اہم ہیں. ایک یہ کہ اس آیت سے صاف لگتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر اولاً ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے, پہلے موجود نہیں تھا, کیونکہ بنیادیں اٹھانے کا مطلب یہی ہوتا. لیکن ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ بنیادیں وغیرہ ختم ہو گئی ہوں, گھر پرانا بنا ہوا ہو, نئے سرے سے اٹھائی گئی ہوں, تو اس کا امکان ہے. اس لیے ہمارے محققین کی دونوں آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ گھر آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مشکل سے یہ مقام اللہ کی رہنمائی میں تلاش کر کے اس کو عصر نو تعمیر کیا, اور دوسری رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے اس گھر کو تعمیر کیا ہے. آگے انہوں نے دعا کی ہے, اور دعا کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ اب ہماری دعا قبول فرما. میں یہ بتا چکا ہوں کہ اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے, یا بنی اسرائیل کے 122 نمبر آیت سے, وہ یہود کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اصل ملت ابراہیمی کا حصہ بن جاؤ, اس امت کا حصہ بن جاؤ جو اب نئی برپا کی جا رہی ہے, اور دین ابراہیمی کو بھی خالص کیا جا رہا ہے, اس کے اندر جو یہود نے اور جو قریش نے آمیزشیں کر رکھی ہیں ان سے پاک کیا جا رہا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو آپ اس کو اختیار کریں, یہ دعوت دی جا رہی ہے. اس کے لیے پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی کیا حیثیت ہے اور اس امت کی اب جو اٹھائی جا رہی ہے اس کی کیا حیثیت ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے. تو دونوں بزرگوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب, ہماری یہ دعا قبول کیجیے گا جو ہم کرنے جا رہے ہیں, क्योंकि आप सुनने वाले और जानने वाले हैं। अल्लाह ताला की सिफात के बारे में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब दो सिफात इकट्ठी आ जाती हैं और उनके बीच में वाव नहीं होती अतफ की, तो इसका मतलब है कि वो एक ही सिफत है जिसके दो पहलू हैं, एक ही सिफत है जिसके दो पहलू हैं। तो यहाँ समी अलीम है कि अगर सिर्फ समी हो और जानने वाला ना हो तो समी का कुछ मानी नहीं है, और अगर अलीम हो और सुनने वाला ना हो तो अलीम भी मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए उसके दोनों पहलू मिलाकर एक जामे सिफत बनती है। अरबी ज़ुबान के अल्फाज कि जो वसत है उसको अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं इस तरह से कि वो बहुत खुदा की सिफात का कुछ ना कुछ तहम्मुल कर सके, क्योंकि खुदा की सिफात इतनी अजीम है कि वो हमारी इंसानी ज़ुबान उसको बयान नहीं कर पाती। उसके फिर अल्लाह ताला ने एक तरीका ये निकाला है कि दो सिफतें इकट्ठी कर देते हैं ताकि उसकी इहाता हो जाए, वो किसी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा उसका कैनवस वसी हो जाए। तो अब दुआ के लिहाज से देखिए कि समी होना ज़रूरी है। तो अगर मैं पुकारूं और वो दुआ जिसको मैं पुकार रहा हूँ दुआ सुन नहीं सकता तो जवाब क्या देगा। और अलीम का मतलब है कि आप अपने इल्म के मुताबिक, अपनी हिकमत के मुताबिक, अपनी दानाई के मुताबिक इस दुआ को कबूल कीजिए। तो ये पहलू दोनों पेश नज़र रख के उन बुज़ुर्गों ने दुआ की है। दुआ बड़ी अजीम है, जितने ये बुज़ुर्ग अजीम है उतनी ही शान की दुआ है, छोटी दुआ नहीं है, बहुत बड़ी दुआ है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये दूसरी अजमत उनके सामने आती है कि वो कितना बड़ा विजन रखते थे अगली अहद के लिए, फ्यूचर के लिए, और किस किस्म की उनकी दानाई है कि वो एक सहरा में बैठे हुए क्या मुस्तकबिल का क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हैरत अंगेज़, यानी वो बड़े बड़े फ़लसफ़ी और बड़े बड़े दाना बिल्कुल छोटे से लगते हैं। सिर्फ इस दुआ को अगर आप देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग कर रहे हैं, यानी ये क़यामत तक के लिए एक चीज़ मांग रहे हैं। फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमैन, दो हैं चूँकि बुज़ुर्ग तो दोनों ने अपने लिए दुआ की कि ऐ हमारे रब हम दोनों को मुस्लिम बना दें। ये बड़ा दिलचस्प इस लफ्ज़ है। मुस्लिम का मतलब होता है फरमा बरदार और अपने आप को झुका देने वाला, और मुस्लिम का मतलब मुसलमान होना भी होता। तो ऐसा लफ्ज़ बोला है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं, ऐसा लफ्ज़ लिया है कि दोनों की तरफ जहन जाता है। तो ऐ हमारे रब हम दोनों को मुसलमान बना दें, इस मानी में भी हो सकता है, और ऐ हमारे रब हम दोनों को फरमा बरदार बना दें। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद में से भी एक पूरी उम्मत उठाइए जो आपकी फरमा बरदार हो। यहाँ पे लक जो है और दोनों जगह पे ये वाज़े करता है कि यहाँ फरमा बरदारी का मफहूम गालिब है। तो ये क्राइन होते हैं कलाम के अंदर कि अपना फरमा बरदार बना ले, ठीक है, अपना मुस्लिम बना ले। तो मतलब मुस्लिम होता कौन है, आगे एक आयत नंबर 131 में जाकर अल्लाह ताला ने आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इस काला लहू रब्बहू असलम, जब मैंने इब्राहीम से कहा कि असलम करो तो काला असलम तुले रब्बिल आलमीन, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रब्बुल आलमीन के लिए मुस्लिम। मतलब क्या है इसका, देखिए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक खूबी बयान की कि वो आखिरी दर्जे के फरमा बरदार हैं, अल्लाह ताला हमसे भी यही चाहते हैं कि हम आखिरी दर्जे में अल्लाह के फरमा बरदार हो जाएं। मैं मुसलसल दर्स में ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा का हुक्म अकली तौर पर समझ आए ना आए, मुझे मानना है, उसकी लॉजिक समझ में आए या ना आए मुझे मानना है, मुझे वो दानाई की बात लगे ना लगे मुझे मानना है। अल्लाह की हर बात दानाई वाली है लेकिन मुझे नहीं लग रही तो फिर भी मुझे मानना है। ये है असलम। नुकसान नज़र आ रहा है तब भी मान नहीं है, फ़ायदा नज़र आ रहा है तब भी मान नहीं है, कोई अजीब सी बात लग रही है, अनोखी सी बात लग रही है। मतलब कत्ल शरीयत में हराम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है, वो नबी का ख्वाब है, ये ना समझ लीजिए कि आपको भी आए तो आप भी कर डालें, वो नबी का ख्वाब है। तो उनको लगा कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, तो अनोखा ख्वाब होने के बावजूद अमल करने चले गए। ये वो जगह है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं कि बस हुक्म है, अमल करना। अब ये अल्लाह की शरीयत में मना है कि किसी की जान ली जाए, और अब अल्लाह ही हुक्म दे रहे हैं, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे खड़े होना है। आप इस पर तो बहस कर सकते हैं कि ये हुक्म है या नहीं है, इस हुक्म के मानी क्या है, ये तो बहस हो सकती है। लेकिन जैसे ही हुक्म आ गया, बस हमने मानना है। हमने सर सैयद के अहद में ये चीज़ करने की कोशिश की, तमाम मकातब फ़िक्र ने, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, अपने समेत शामिल करके कह रहा हूँ, अपने मकतब को, हमने ये कोशिश की कि अकल के ज़रिए से दीन को मनवाया जाए। दीन सबूत के ज़रिए से मनवाया जाता है, यानी मेरे वाले साहब का पैगाम आप लेकर आए कि वो 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, मैं सोचने बैठ जाऊं कि उनको क्या करना है, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। मैं बस इनसे पूछूं कि उनका हुक्म है, सही कह रहे हैं आप, यही कहा था, काफ़ी, अब अमल करना। ये वो रवैया है जो खुदा के हजूर चाहिए। वालिद के हजूर हो सकता है कि बाज़ का तम बहस कर लें, लेकिन खुदा के हजूर यही रवैया चाहिए। ये है जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, और यही वो लफ्ज़ है जो मुस्लिम का लफ्ज़ अदा करता है कि बस खुदा का हुक्म आ गया, सर सैयद की मंतक पे पूरा उतर जाए या नहीं उतरता, मैंने मानना है। मगरब की मंतक पे पूरा उतरता या नहीं उतरता, मैंने मानना है। लेकिन वो हुक्म अल्लाह का होना चाहिए, बस मुसलमान का काम इतना है। क्योंकि हमने कई हुक्म खुद बना लिए, सारी जो मुतसव्विफाना तरीकत है वो हमने खुद बनाई है, सारे जो फिका के बहुत सारे अहकाम हैं जिसका कोई कुरान और सुन्नत को हवा भी नहीं लगी हुई, हमने खुद बनाए हैं। तो उनसे बुलंद होना है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल तक हमने महदूद रहना है। तो पहला काम यह है कि ऐ अल्लाह हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना लें। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि दुआ करने जा रहे हैं एक उम्मत की तासीस की, एक उम्मत की बुनियाद रखने की, और आगाज़ अपने से किया, हालांकि दोनों फर्मा बरदारी में खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि फर्मा बरदार नहीं है, दोनों फर्मा बरदारी में खड़े हैं, दुआ यही मांग रहे हैं। और फिर फरमाया कि हमारी औलाद में, हम दोनों की औलाद में, ये वाज़े रहना चाहिए। इससे मुराद मिल्लत यहूदियत नहीं है, हज़रत इसहाक की औलाद मुराद नहीं है। जो दो बुज़ुर्ग दुआ कर रहे हैं उनकी ज़ुर्रियत में है, और वो इब्राहीम और इस्माईल। तो ये नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से वजूद पजीर होने वाली उम्मत की तरफ इशारा था। तो दूसरी, अब इस उम्मत को कैसा होना चाहिए, वो लफ्ज़ मुस्लिमतन लग से बयान किया है। वैसी उम्मत नहीं होनी चाहिए जैसे यहूद हो गए हुए हैं। यहूद सब कुछ उनके पास है, शरीयत उनके पास है, अल्लाह की किताब उनके पास है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है, ये बताना पेश नज़र है। चूँकि ये यहूद के लिए आईना भी है, यहूद को दावत भी है कि अल्लाह के मुस्लिम बन जाओ, और वो बनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अब वो लफ्ज़ वो मुसलसल बोले जाएंगे, आगे भी हज़रत याकूब का अलैहिस्सलाम ज़िक्र भी आएगा, तो वहाँ पर भी यही लफ्ज़ बोले गए। असल मुतालबा क्या था, हज़रत इसहाक़ किस को दीन समझते थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम किसको दीन समझते थे, वो खुदा की फरमा बरदारी थी, और तुम ज़ाहरी चीज़ों में फंस गए। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि शरीयत भी दीन है, लेकिन सिर्फ शरीयत दीन नहीं है, इस रवैये का नाम दीन है जिसको मुस्लिम होना कहते हैं। तो अगर मैं मुस्लिम नहीं हुआ अपने रवैयों में, अपने सुबह शाम के कामों में, तो जितनी मर्ज़ी शरीयत की पैरवी कर लूँ, वो यहूद हमसे ज़्यादा सख्ती से करते हैं, यानी हम फिर नरम पड़ जाते हैं, वो नहीं पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो फिर ये बड़ी बात है कि हमारे पास कुरान और सुन्नत महफूज है, तो हम फिका के बाद अहकाम से इख्तलाफ कर लेते हैं, हनफियों के वो शाफी नहीं मानते, शाफियों के हनफी नहीं मानते। लेकिन यहूद के यहाँ ऐसा नहीं है, वो फिका को भी दीन का हिस्सा मानते हैं और बड़ी सख्ती से पैरवी करते हैं। कमी किस चीज़ की है? मुस्लिमतन लक, इसकी कमी कि वो खुदा के फरमाबरदार नहीं है, वो फिका के फरमाबरदार है अपनी तमन्नाओं के। इसको कुरान ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी तमन्नाएं तुम उनकी पैरवी करते हो। तो मेरे और आपके ईमान का मतलब यह है कि हम खुदा के फरमाबरदार हों। चुनाचे जो खुदा का फरमाबरदार होगा, उसको जब पता चले कि अल्लाह का हुक्म ये तो नहीं था, ये था, तो क्या करेगा? मसलक की बात मानेगा, उस्ताद की बात मानेगा, बाप की बात मानेगा, या खुदा का हुक्म वाज़े होने पर ठीक हो जाएगा? तो पूरा कुरान मजीद यहूद को बता रहा था कि अल्लाह का हुक्म ये था, ये था, ये नहीं था, ये नहीं था, और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया रज़ी अल्लाह अन्हु? छोड़ के आ गए। उस्मान गनी ने क्या किया? छोड़ के आ गए। उमर फारूक ने क्या किया? छोड़ के आ गए। हज़रत अली ने क्या किया? छोड़ के आ गए। ये उनकी अजमत, वो मुसलमान हो गए और वो नहीं हुए। तो ये करने का काम दरअसल ये है। तब उन्होंने कहा कि मेरी औलाद, इस वक्त तो मैं इस्माइल के सुपुर्द कर रहा हूँ और इस्माइल की औलाद में नेक लोग पैदा होते रहेंगे, लेकिन एक उम्मत मुस्लिमा आपने उठानी है, एक, दो तीन नहीं। देखिए बसीरत कितनी अजीब है कि उन्होंने पूरा एक प्लान अपने सामने रखा है कि मेरी, हम दोनों की औलाद में यानी ज़ुर्रियत इस्माइल में एक उम्मत हो जो ये काम करे। व आरना मनासिकना, ऐ और हमारे रब, इस उम्मत जब बरपा की जाए तो हमें वो चीज़ें सिखाइएगा जो मनासिक हैं, इबादत के तरीके हैं। आरना का लफ्ज़ बहुत अच्छा बोला है, यानी अच्छी तरह जनवा दीजिए, अच्छी तरह पहचान हो जाए, कोई शुबा ना रहे उसमें। और अजीबोगरीब बात है कि उम्मत मुस्लिमा का जो गैर मशकूक दीन है वो ऐसा ही है जैसे आंखों से देखा हो, जिसको हम मतवातर कहते हैं, सुन्नत मतवातरा बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह वाज़े है, कुरान मजीद बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह वाज़े है। तो मनासिक इस तरह से सिखाए गए हैं कि उम्मत में उनका चलन इस तरह से हो गया है कि बिल्कुल सामने पड़ी, बिल्कुल सामने, और कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, अब देखिए उनकी बसीरत कि आरना मनासिकना, ये नहीं बताया कि हमें सिखाइए, यानी आगे जैसे अल्लामा भी आया है तो अल्लामा नहीं बोला उन्होंने, आरना मनासिकना, वो मशहूद हो जाए, गली गली में नज़र आ रहे हो, हर जगह नज़र आ रहे हो। वतुब अलैना, और हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल फरमाइए। तौबा का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं जगह जगहों पर वाज़े कराया हूँ, हज़रत आदम के किस्से में वाज़े किया था अलैहिस्सलाम। तौबा का मतलब होता है कि गलती से वापस पलट आने की तौफीक, गलती के एतराफ़ की तौफीक, खुदा से तौबा मांगने की तौफीक, ठीक है, और फिर गुनाह को मिटा कर अजर देने की, जो खुदा की तरफ से अनायत है उन सब के लिए। तुब अलैना के अल्फाज हमारे ऊपर बुनियादी मानी है, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर तवज्जो फरमाइए, हमारे ऊपर नज़र करम कीजिए, ये मानी होते हैं। इन्ना का अंत तवाबुर रहीम, बेशक आप तवाब हैं और रहीम हैं। यहाँ पर भी दो सिफतें इकट्ठी की गई हैं। बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये हम माना अल्फाज है, ऐसा नहीं, ये भी वही काम कर रहे हैं कि दो लफ्ज मिलकर बहुत जामियत और बहुत मानवियत पैदा कर रही है। तवाब का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी फरमाया, अनायत करने वाला, लेकिन तौबा कबूल करने वाला का मफहूम इसमें गालिब है। रहीम का मतलब होता है रहमत वाला, रहमत अदल का तकाजा करती है, तौबा अदल का तकाजा नहीं करती। ठीक है, तौबा कबूल कर लीजिए, अदल है ना इंसाफी, हर सूरत में तौबा कबूल करना। तो तवाब मगफरत ही मगफरत है, लेकिन रहमत के अंदर अदल भी है। मैं वाज़े कर चुका हूँ जब बिस्मिल्लाह की तफसीर की थी, तो रहीम के अंदर चूँकि अदल है, तो उस आदमी की तौबा कबूल होगी जिस पर रहमत उसको मुस्तहिक बना देगी, और रहमत किसको मुस्तहिक बनाएगी जिसकी वजह से जुल्म वजूद में ना आए। चुनांचे फरमाया कि मैं मुशरिक की तौबा कबूल नहीं करूँगा, उसके ऊपर रहमत नहीं करूँगा। तो मुशरिक रहमत से निकल गया है, इसलिए उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी आखरत में। दुनिया में तो कर लेगा तो शिर्क छोड़ देगा तो हो जाएगी। तो तवाब का मतलब है तौबा कबूल करने वाला, रहमत तो यूँ समझिए कि जो आदमी रहमत का मुस्तहिक होगा उसी की तौबा कबूल होगी। ठीक है, ये इन दो सिफतों के इकट्ठा करने से एक मफहूम ये निकल रहा है। और उसकी रहमत चूँकि तौबा वाली है तो इसलिए ये भी रहमत ही का तकाजा है कि वो तौबा भी कबूल करता है, वरना अगर वो ये असूल बना लेता कि मैंने तौबा कबूल नहीं करनी तो बना लेता, कौन उसका हाथ रोक सकता है। तो रहमत से दो चीज़ें फूट रही थी, अदल और तौबा। एक को बयान कर दिया कि मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ लेकिन कायदा रहमत के तहत, ऐसे नहीं। तो कायदा रहमत किसके लिए मुतहरक होगा, वो अगले सूरह आले इमरान में, सूरह तौबा वगैरह में वाज़े होता है कि जो गलती पर तौबा करने वाले होंगे, इस्तग़फ़ार करने वाले होंगे, हर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। चुनांचे जो मरने तक तौबा ना करे तौबा कबूल नहीं होगी, मरते हुए करे तौबा कबूल नहीं होगी। ये उस रहमत के कायदे के ख़िलाफ़ है कि एक आदमी को जितनी मोहलत मिली थी सारी बर्बाद कर दी और अब आ गया वो, तो ये अदल के कायदे के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए जो तौबा है उसको रहमत के दायरे में रख दिया अल्लाह ताला ने कि मेरी तौबा कबूल करने का कायदा क्या है। राजा अब आपको समझ आ जाएगा कि अल्लाह ने क्या मसला है अल्लाह ताला को कि ठीक है फिरौन की बात मान लेते हैं कि मैं डूब रहा हूँ, जी आला मान लिया। अल्लाह ने कहा लान, अब डूबते हुए मुझे कह रहे हो कि मैं रब मूसा और हारून पर ही मान लिया, अब नहीं मानी जाएगी, अदल के ख़िलाफ़। रहमत तो तकादा कर रही थी कि ठीक है चलो अभी भी तौबा भी तकादा कर सकती, तौबा तो कर रहा है वो, देखिए इस तरह फरमाया कि जो सारी ज़िंदगी गुनाह पर पड़ा रहे और उसकी उसी हालत में मौत आ जाए तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये रहमत का कायदा है जिसके अंदर से अदल फूटता है, उस अदल से फिर अल्लाह ताला इन्हराफ नहीं करते। ये खुदा की शान के ख़िलाफ़ है कि वो गैर मुनसिफाना मामला करे, ये उसकी शान के ख़िलाफ़ है। तो ये तवाबुर रहीम का इतना जाम मफहूम है इसके अंदर। अब जो अगली दुआ है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी दुआ है जो अभी तक हमने पढ़ी है, और हज़रत इब्राहीम की विज़न, उनकी बसीरत, उनकी खुदा के दीन के साथ लगन, खुदा के मिशन के साथ लगन, खुदा के उस पैगाम की हकीकत, सब कुछ इसमें झलक रहा है। बहुत बड़े आदमी के बहुत नहायत मुनासिब चुने हुए अल्फाज, बहुत आला अल्फाज। आगे फरमाई, रब्बना वबास फीहिम, हज़रत इब्राहिमी की दुआ और इस्माइल की दुआ चल रही है, कहते हैं हमारे रब फिर जो उम्मत मुस्लिमा आप बनाएं उनमें एक रसूल उन्हीं में से उठाइएगा। देखिए कितने एक एक जुमले में क्या क्या जवाब पोशीदा है। यहूद कह रहे हैं कि ये इनमें से तो आना नहीं था नबी ने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इब्राहिम ने दुआ यही की थी कि इनमें से इन्हीं में से रसूल आना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन में से हैं, औलादे इस्माइल से हैं। तो रब्बना वबस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे रब इन्हीं में से एक रसूल भेजिएगा, एक रसूल, जिसे वाज़े हो रहा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई रसूल नहीं आया, एक ही रसूल की दुआ की जा रही। तो ये वबस फीहिम रसूलन मिनहुम, इन्हीं के अंदर से एक रसूल भी इनमें मबूस कीजिए। उम्मत मुस्लिमा इसके बगैर बन नहीं सकती कि एक नए रसूल की ज़रूरत होगी। यतलू अलैहिम आयातिक, वो रसूल काम क्या करेंगे, आपकी आयतें इनको पढ़कर सुनाएंगे। ये किताब मांगी, खाली नबी नहीं मांगा, क्योंकि बाज़ नबी ऐसे भी आए हैं कि जिनको किताब नहीं मिली, बस वो नबी थे आ गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किताब वाला रसूल मांगा जो अल्लाह का कलाम पढ़कर सुनाए। यतलू से वाज़े हो रहा है कि वही ऐसी हैं जो کلام کی صورت میں نازل ہوگی جس کو پڑھا جائے گا. ایک ہوتا ہے کہ پیغام دل میں آیا پہنچا دیا گیا, اس کے لیے یتلو نہیں آ سکتا. تو یتلو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. ہمارے بعض علماء یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کے الفاظ میں اترا ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغام اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور آپ نے اس کو زبان دی ہے. یہ الفاظ آپ کے ہیں, پیغام اللہ کا ہے. لیکن یہاں جو دعا کی جا رہی ہے اور تین مقامات پر یہ دعا آئی بھی ہے اللہ کی طرف سے, بھی دعا نہیں بلکہ یہ آیت جس میں یہ تین کام بتائے, وہاں بھی یتلو ہی بولا گیا. تو یتلو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو درخواست کی کہ اے ہمارے رب ان کے اندر سے ایک رسول بھیجیے گا جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ بھی کرے. اس آیت میں بہت ساری اہم باتیں ہیں لیکن ٹائم بھی ہمارا ہو رہا ہے, تو میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے اس کو, کہ نبی اس آیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس میں ان چاروں چیزوں کی ترتیب ڈفرنٹ ہے. یتلو علیہم تو سب میں پہلے آیا ہے, جتنی بھی آیتیں اس مضمون کی ہیں, یعنی تین اور مقامات پہ ہیں. وہاں یتلو علیہم کے بعد, یعنی یتلو علیہم تو پہلے ہی آیا ہے, لیکن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے پہلے وَيُزَكِّيهِمْ آیا. تو یوں سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی دعا میں ان چیزوں کی ترتیب مختلف ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو اس میں ترتیب مختلف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یزکیہم سب سے اینڈ پہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یزکیہم دوسرے نمبر پہ رکھا ہے, یتلو علیہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے کام ہوں گے تو پھر تزکیہ ہوگا, یعنی آیتیں تلاوت کی جائیں گی, تعلیم کتاب و حکمت ہوگی تو پھر تزکیہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, تلاوت آیات سے یہ چیز ہوتی ہے, تو ترتیب سے یہ معنی پیدا ہو جائیں گے کہ محض تلاوت آیات ہی تزکیہ کر دیتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یزکیہم صوفیہ کے معنی میں بولا نہیں جاتا تھا, جس معنی میں صوفیہ نے بعد میں استعمال کیا کہ وہ مراقبے اور چلے کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے, بلکہ یہ سیدھا سیدھا بات مان لینے اور اپنے سدھر جانے کے معنی بولا جاتا تھا. تو قرآن کی آیتیں مجھے سدھاریں گی, آپ کو سدھاریں گی, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تعلیم کتاب و حکمت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو خدا کی ترتیب میں بات یوں ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب میں بات یہ ہے کہ آیتوں کی تلاوت ہوگی, کتاب کی تعلیم ہوگی, حکمت کی تعلیم ہوگی, تو لوگ سدھر جائیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام بحثیت بشر, ان کا ذہن یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ بحثیت خدا, ان کے ذہن میں تزکیہ دوسرے نمبر پہ ہے. اس لیے اس جملے کو سمجھیے جو حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ جا کر مصر فرعون کو کہیں, تو ان کا جملہ یہ ہے کہ وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى, کیا کوئی سدھرنے کا پروگرام ہے؟ پہلا جملہ جا کر بولنا ہے, تو سدھرنے کا مفہوم ہے اس کے اندر. تو سدھرنے کے لیے ایمان لانا ہے, عقیدہ درست کرنا ہے, رویہ درست کرنا ہے, مسلمان بننا ہے, اس کے بعد پھر کتاب و حکمت کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.